हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जल्दी ही तारा परी आकाश के सैर करती हुई, बादलों को चीरती हुई अपने बंगले में की छत पर पहुँच चुकी थी, और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि करिश्मा, करिश्मा जी ही थी। करिश्मा जी को देखकर तारा बुरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन तारा परी भूल चुकी थी कि करिश्मा जी भी कोई आम औरत नहीं थी, वो एक शक्तिशाली जिन थी, इसीलिए वो वहाँ जल्दी ही पहुँच चुकी थी। वेल, तारा धीरे धीरे अपने कमरे में जाने लगी थी, और जल्दी ही वो बिना करिश्मा जी की नज़रों में अपने कमरे में चली गई थी, और करिश्मा जी भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। पिछले 15 सालों से अमन को बिना बताए वो इसी तरह से अपने पति को ढूंढने के लिए जाया करती थी, कभी किटी पार्टी के बहाने से, कभी किसी के जन्मदिन के बहाने से। वो कितनी ही रातें इसी तरह से अनुष्ठान किया करती थी, लेकिन आज तक उनका एक भी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था, और वो अपने पति को नहीं ढूंढ पाई थी, नहीं उनका कोई क्लू मिल पाया था, क्योंकि करिश्मा जी को कहीं न कहीं यही लगता था कि उनके पति जहाँ भी होंगे वो जिंदा होंगे और ठीक होंगे, क्योंकि किसी भी जिन की कभी भी जान नहीं जा सकती थी, उन्हें केवल कैद किया जा सकता था, उन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए करिश्मा जी को लगता था कि किसी भी काली शक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके शक्तिशाली पति को मार सके, इसीलिए कभी वो जंगल में, कभी शहर में, कभी किसी कोने में, कभी बगीचे में, कहीं ना कहीं अपने पति को ढूंढने के लिए जाया करती थी। लेकिन आज तक उन्हें उनके पति नहीं मिल पाया था, लेकिन जब से तारा ने माँ बनने की खबर सुनाई थी, तब से उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनके आने वाला वंशज ही अब अपने दादा को ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी असीमित शक्तियाँ होगी कि अगर वो एक बार ध्यान लगाकर बैठेगा तो जल्दी ही उसे उसके दादाजी मिल जाएंगे। इसीलिए बस उनके 15 सालों का इंतज़ार 9 महीना में बदल गया था, और वो 9 महीना का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। 9 महीने पूरे होने के बाद जैसे ही उनके वंशज जन्म लेगा तो वो उन्हें ज़रूर बता देगा कि उनके दादा, उसके पति आने की उसके दादा कहाँ हैं। बस करिश्मा जी को इसी चीज़ का इंतज़ार था, इसीलिए फिर भी वो थोड़ी बहुत अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि अमन के होने वाले वंशज का स्वागत उसके दादा दादी एक साथ करें। बस यही इसीलिए करिश्मा जी अब दिन रात अपने पति को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं अपने कमरे में जाकर तारा ने देखा था अमन बेखबरी से सोया हुआ था। तारा भी उसके पास जाकर लेट गई थी। आज आसमान की सैर करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा सुकून सा महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर की तारा दिखाई देने लगी थी। तारा ऐसे ही थी, शुरू से ही उसे परीलोक में शरारत करना, बचपन ना करना, इधर उधर घूमना, आसमान की सैर करना, दूसरों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन जब से वो राक्षस उसकी जिंदगी में आया था, तब से जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा था। अमन से मोहब्बत हो गई थी, और अब तो वो माँ भी बनने वाली थी। अब उसके जज्बात बहुत ज्यादा बदल गए थे, और उसने उस राक्षस के डर को काफी पीछे छोड़ दिया था, और आज उसने अपनी एक परी की तरह की जिंदगी को जिया था। लेकिन आज करिश्मा जी को उसे जंगल में देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और उसने सोच लिया था कि करिश्मा जी के दर्द को जरूर दूर करेगी और जल्द से जल्द उनके पति को ढूंढ निकालेगी। वो अच्छी तरह से जानती थी उसके पेट में जो बच्चा है वो कितना शक्तिशाली है, और तारा को पूरा यकीन था कि उसका बच्चा उसके इस मकसद में जरूर उसकी मदद करेगा। तारा मन ही मन अपना इरादा करती हुई गहरी नींद में सो चुकी थी। वेल, अगली सुबह जैसे ही अमन की आंख खुली, अमन ने देखा तारा उसके हाथ पर लेटी हुई उसको हक करके उसके सीने में छुपी हुई सो रही थी। वो सोई हुई बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। अमन का दिल चाहा कि वो उसके होठों को चूम ले, और अपने आप को वो रोक नहीं पाया था। उसने उसके होठों को चूम लिया था, बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा था। धीरे धीरे अमन वाइल्ड होता जा रहा था, क्योंकि तारा की खुशबू उसे बेचैन कर रही थी, और तारा को इतने करीब पाकर वो अपने होश को बैठता था। तारा चूंकि पूरी रात सोई नहीं थी, वो आसमान की सैर करने में बिजी थी, तो उस अब बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, और उसका उठने का मन नहीं कर रहा था, और वो नींद में ही अमन को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अमन था कि उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ही शिद्दत से उन्हें चूमने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सुबह का अपना नाश्ता कर रहा हो। कितनी ही देर तक तारा के होठों को चूमता रहा था, लेकिन तारा थी कि उसे बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। अमन भी समझ चुका था कि तारा को शायद कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, और उसे लगने लगा था कि शायद उसके बच्चे का ही ये साइड इफेक्ट है कि उसे ज्यादा नींद आ रही है, वरना तारा तो उसका हल्का सा छूने से उठ जाया करती थी। इसीलिए अमन ने भी उसे ज्यादा तंग करने का इरादा छोड़ दिया था और उसके फोरहेड पर किस करता हुआ बाथरूम में घुस गया था। और जल्दी ही नहा धोकर तैयार होकर वो जैसे ही बाहर आया, उसने देखा तारा अभी भी सो रही थी। अमन का दिल ही नहीं कर रहा था कि वो उसे उठाए, लेकिन उसे ऑफिस के लिए भी तो देर हो रही थी। लेकिन तभी अमन को कल का इंसिडेंट याद आ गया था। उसे याद आ गया था कि तारा किस तरह से स्टोर रूम में बंद हो गई थी, इसीलिए उसने उसे आज घर पर ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। वहीं विक्रांत रंधावा और उसकी मॉम करिश्मा जी नाश्ते पर बैठे हुए उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे, और अमन को अकेला आता हुआ देखकर विक्रांत रंधावा चौंक गया था और करिश्मा जी भी हैरान हो गई थी। तब करिश्मा जी ने अमन से पूछा था, रे बेटा, तुम अकेले तारा बेटी कहाँ है? तभी विक्रांत रंधावा भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा था, हाँ 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 अमन, तारा जी कहाँ है? क्या वो नाश्ता नहीं करेंगी क्या आज? विक्रांत की बात सुनकर अमन चेयर पर आकर बैठ गया था और बोला था, वो मॉम, तारा अभी तक सोई हुई है, शायद कल काफी ज्यादा थक गई थी इस वजह से, तो मैं भी उसे नहीं उठाया। तो मैं एक काम करता हूँ, आज अभी विक्रांत और मैं हम दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं और तारा आज घर पर आराम कर लेगी। अमन की बात सुनकर करिश्मा जी खुश हो गई थी और बोली थी, बेटा, मैं भी यही कहना चाहती थी कि तारा कोई हालत में ऑफिस में ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब तारा बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम दोनों जाओ ऑफिस के लिए और मैं उसका ध्यान रखूंगी। वहीं विक्रांत का मुंह उतर गया था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि तारा आज ऑफिस नहीं जा रही है तो वो भी के कोई न कोई बहाना बनाकर ऑफिस के लिए मना कर देता। लेकिन अब तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, अब तो उसे ऑफिस जाना ही पड़ता, क्योंकि वो तैयार होकर बैठ चुका था ऑलरेडी, करिश्मा जी को बता भी चुका था। विक्रांत अमन के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था, हालांकि इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसने सुबह से तारा की शक्ल को भी नहीं देखा था। पर तारा की शक्ल को देखे बगैर वो अपना दिन शुरू नहीं किया करता था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, वो किस तरह से तारा को देखे, क्योंकि तारा को देखे बगैर उसका दिल पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। तब लेकिन फिलहाल अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो अमन के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित, जैसे ही रात को मल्लिका उसके पास पहुंची थी, उसने उससे पूछा था कि क्या उसने विक्रांत की जान ले ली, लेकिन मल्लिका ने उसे बहाना बनाते हुए कहा था कि विक्रांत उसके पहुंचने से पहले ही निकल रहा था। तब अमित हंसने लगा था और बोला था कि तू किसी काम की नहीं है, तू एक मामूली इंसान को भी नहीं मार पाई और अपने आप को काली शक्तियों की चुड़ैल कहती है। ऐसा कहकर मल्लिका का मजाक उड़ाता हुआ अमित जोरों से हंसने लगा था। अमित को इस तरह से हंसता हुआ देख मल्लिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने अमित को कुछ भी कहा तो अमित उसका बहुत बुरा हाल कर सकता था, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा था और सीधी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मल्लिका सोचने लगी थी कि आखिर ये विक्रांत रंधावा है क्या चीज, और उसके पास इतनी सारी शक्तियां कहां से आई कि उसने मेरे अंदर के काले साए को भी देख लिया। लेकिन मल्लिका इतना तो समझ चुकी थी कि विक्रांत जो कुछ कोई भी था वो अमित से भी ज्यादा ताकतवर था और उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा थीं। इसीलिए मल्लिका ने दिल से विक्रांत रंधावा का साथ देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मल्लिका को लगने लगा था कि इस बेवकूफ अमित के साथ रहते रहते तो इतने दिन में अभी तक वो तिलिस्मी पत्थर हासिल कर पाए, ना ही वो अमन का जिस्म हासिल कर पाए, तो हो सकता है विक्रांत के साथ काम करने पर वो उसे ये दोनों चीज मिल जाए। तो मल्लिका अपने लिए कुछ सोचने लगी थी। वैसे मल्लिका के पास शक्तियों की कमी नहीं थी, साथ ही साथ उसने अब अमित के ही अंश से पैदा हुआ बच्चा भी जंगल में छोड़ दिया था। मल्लिका को बस केवल सही वक्त का इंतजार था। सही वक्त आते ही वो अमित को सरप्राइज देने वाली थी, ऐसा सरप्राइज जिससे अमित की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहीं कितनी ही देर बाद 10 से 11 बजे के बीच तारा परी सोकर उठी थी, और जैसे ही वो सोकर उठी उसने बराबर में देखा कि अमन तो वहां था ही नहीं। तारों को लगा अमन वॉशरूम में होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर गई तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने तो सोचा था कि अभी सुबह के 8 या 7 बजे होंगे, लेकिन ये तो अब 11 हुए थे। तारा को समझते हुए देर नहीं लगी थी कि अमन बिना उसे लिए ऑफिस के लिए निकल चुका था। लिखा, प्रणाम।